जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।
ओम शांति। आज सवेरे से अच्छा बीता दिन, किस किस का बहुत अच्छा बीता? और सीखना है कुछ कुछ तो सवेरे से ही अच्छा दिन बीते। अब हम पहले चर्चा करेंगे कुछ सुंदर धारणाओं की, जिससे हमारा जीवन सुखी हो, हमारी शक्तियां भी बढ़ें, हमें सफलता भी मिले। जीवन हमारा गुणों से संपन्न हो। सबसे पहले याद रखेंगे, हमें होना चाहिए पूर्ण संतुष्ट। संसार में आजकल एक चीज बहुत बढ़ रही है, लोभ। तो मनुष्य कहीं भी संतुष्ट नहीं है। जितना ज्यादा मिल जाए उतनी ज्यादा तृष्णाएं और बढ़ जाती हैं। ज्ञानी वो जो अपने को संतुष्ट आत्मा बनाए, दिल से आवाज निकले कि भगवान को पाकर सब कुछ पा लिया। यह आवाज दिल से नहीं निकलती बहुतों के, बाबा तो मिला ठीक है पर सब कुछ मिल गया, क्या विचार है? थोड़ा दिल में आता नहीं। पड़ोसी भी कहते हैं, रिलेटिव भी कहते हैं, अच्छे ओम शांति में गए, घर खाली रह गया तुम्हारा, तो देखो फलाने को कितना दहेज आ गया, घर भर गया। लोग मनुष्य को संतुष्ट नहीं रहने देता, और जहां संतुष्टता नहीं है वहां शांति भी नहीं है। मन अशांत रहता है, तृष्णाओं के पीछे भागता है, इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। इच्छाएं तो अंतहीन है, कभी पूर्ण नहीं होती, या होती हैं कभी नहीं होती, बढ़ती जाती हैं। इसलिए सभी को अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए? कम करें पहले। कई लोगों ने अपनी इच्छाओं को ही अपनी आवश्यकता बना लिया है। ध्यान देंगे इस बात पर, आवश्यकता तो जरूरी है, हमें भोजन चाहिए उसकी आवश्यकता है, कोई बीमारी हुई उसकी दवाइयां चाहिए वो आवश्यकता है, पर उसने ऐसे कपड़े पहने मुझे भी ऐसे ही चाहिए, ये इच्छा है। उसका जूता ऐसा है, उसकी साड़ी ऐसी है, मेरी हल्की सी है, लोग क्या कहेंगे, ऐसी चाहिए मुझे भी, ये इच्छाएं हैं। इच्छाओं को जहां अपनी आवश्यकता बना लिया जाता है, वहां मनुष्य इच्छाओं के चक्रव्यूह में उलझता ही जाता है, और इनका कहीं अंत नहीं होता है। इच्छा मुक्त जीवन। क्या कहते थे भक्ति में, हे भगवान एक बार तुम हमें मिल जाओ बस, हम इस संसार की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब ज्यादा देखने लगे हैं, कुछ मिल गया तो ज्यादा देखने की इच्छा हो गई, देख तो लें। त्याग, तपस्या बिना त्याग के नहीं होती। हमारा त्याग पहले स्थूल भी है, फिर ये सूक्ष्म होता जाता है। त्याग के बिना जीवन में तेज भी नहीं आता। त्याग बहुत बड़ी शक्ति है जो आत्मा को तपस्वी बनाता है। इच्छाओं का त्याग, मैंपन का त्याग, देहभान का त्याग, मान सम्मान की इच्छा का त्याग, दूसरों से बहुत सारी कामनाएं रखते हैं हम, उनका त्याग। एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं बड़ी बुरी हैं, मनुष्य को सुखी नहीं रहने देती। जिसको सदा खुश रहना है और सुखी रहना है, वो कामनाओं का त्याग करे। एक इच्छाएं वस्तुओं की, कामनाएं मनुष्यों से। ये मनुष्य मुझसे ऐसा व्यवहार करे, मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया है, बच्चे उसका ये रिटर्न करें। मैंने इनको समय पर मदद की थी, ये अब समय पर मुझे मदद करें। मैंने इनको इतना साथ दिया, ये कहीं मेरी महिमा भी नहीं करते। कामनाएं रहती हैं बहुत। निष्काम जीवन ही योग युक्त आत्मा की पहचान है। कामनाओं का त्याग करें। जिसके पास कामनाएं बहुत हैं, उसकी खुशी जीरो हो जाती है, और जिसको अपनी खुशी को बहुत ऊंचा उठाना है, वो कामनाओं को जीरो करे। किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। पति पत्नी के नाते में सभी चेक करें, एक दूसरे से कितनी कामनाएं हैं, उसमें कष्ट हो रहा है एक दूसरे को, प्यार खत्म हो रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, अहम बढ़ रहा है। आगे चलें, मैं थोड़ी थोड़ी बात कहूंगा आपको, लेकिन ये बात बहुत सुंदर है जीवन के लिए। आप इन्हें अभी ठीक करते चलेंगे, लिख लें, चिंतन करें, कुछ चीजें अभी ठीक करें। अहम, झगड़ों की जड़। अहम में हर मनुष्य क्या सोचता है, मैं राइट हूं। हर व्यक्ति यही सोचता है, मैं राइट हूं, ये गलत है। दोनों ही सोच रहे हम राइट हैं, और दोनों ही एक दूसरे को रोंग समझ रहे हैं। तो दोनों राइट हैं या दोनों रोंग हैं? दोनों ही अपने को राइट समझ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को रोंग कह रहे हैं, तो आखिर राइट हैं या रोंग? मैं राइट हूं, इस संकल्प को थोड़ा हल्का करें। लेकिन आप कहीं राइट हो भी सकते हैं, लेकिन जहां झगड़े बढ़ रहे हो, वहां जरा झुक कर निकल जाना ही चाहिए। इसलिए अब सीख लें, हमें स्वयं को मोल्ड करके चलना है, झुका के चलना है, मुड़ के चलना है। जो मोल्ड हो वही रियल गोल्ड, ये तो बात सुना है सभी ने। और जो मोल्ड ही न हो, मैं जो कहूं वही सत्य, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो वो दूसरे गोल्ड को भी, एक दूसरा भी गोल्ड होता है ना, रोल्ड गोल्ड बना देता है, झूठा सोना। मुड़ना जरूरी है, मुड़ेंगे या नहीं? जो झुके वही महान। देखो, वृक्ष की टहनियां अगर लचीली हों, फ्लेक्सिबल, तो कितने भी तेज तूफान चले झूलती रहेंगी ना, और कड़क हों टूटेंगी। वो मनुष्य जो बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीला स्वभाव है, वो सदा खुशियों में झूलता है, समस्याओं को पार कर जाता है, और जो मनुष्य कड़क है वो टूटता रहता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है, उसके अहम को ठेस पहुंचती रहती है। हमें अपने अहम को समाप्त करना है और उसमें दो चीजें लेंगे। पहले, मैं राइट हूं, इस बात को थोड़ा हल्का करें। मैंने आपको कहा आप राइट हो सकते हैं, लेकिन जहां ये संकल्प कि मैं राइट हूं टकराव पैदा कर रहा हो, वहां इस संकल्प को छोड़ देना ही परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए महत्व किस चीज को देंगे? संबंधों की मधुरता को। न महत्व संपत्ति को देना चाहिए और न महत्व बातों को, न अपने अहम को। जो अपने अहम को कायम रखना चाहता है, झुकता नहीं, उनके रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। एक कहानी आप सबने सुनी है, मैं उसको दूसरे ढंग से सुनाऊंगा। सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा, मेरे खजाने में कितना माल पानी है? मुनीम ने हिसाब करके बताया, सेठ जी 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं, इतना है। सुनते ही सेठ जी उदास हो गए, क्या 8वीं का क्या होगा? मैं क्यों सुनाई आपको कहानी? अब सुने ध्यान से। क्या सेठ जी ये समझते थे कि कमाना तो मैं ही जानता हूं, बाकी सारी पीढ़ियां तो नालायक होंगी, वो नहीं कमाएंगे, मुझे तैयारी करके रख देनी है 21 वीडियो के लिए, वो कमाना नहीं जानेंगे। तो सेठ जी के लिए कौन सी बात सुंदर है, बच्चों को पैसा देके जाना या उन्हें योग्य बनाना? सबके लिए है या आप सबके लिए? आप बच्चों के लिए धन इकट्ठा करें और बच्चे अयोग्य रह जाएं, वो किसी भी तरह ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप बच्चों को कुछ न दो, योग्यता दे दो, वो आपको भी कमा के देने लगे, आपकी भी पालना करने लगे, आपको निश्चिंत कर दें कि आप बैठो मौज करो, हम है ना, और आपने उन्हें करोड़ों की संपत्ति दे दी और वो आपके लिए भी चिंताओं का कारण बन गई, उड़ा रहे हैं वो शराब में, रात को जग रहे हैं, साथियों के साथ जाके डांस क्लब में डांस कर रहे हैं, सब नष्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, धन संपत्ति से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है योग्यताएं देना। अपने बच्चों के लिए सोचना है। संबंध श्रेष्ठ हैं, बातें श्रेष्ठ नहीं हैं। इसलिए छोटी बातों के कारण संबंधों को बिगाड़ना नहीं है। सभी स्त्री पुरुष जो हैं अपने परिवारों में अटेंशन दें। हमें किसी बात के कारण अपने प्यार भरे नातों में विष नहीं घोलना है। माताओं से पूछता हूं, ठीक है, बातें तो होती हैं, छोटी बातें आती हैं परिवारों में, दूसरे की भी गलती हो सकती है, आपके पति की भी गलती हो सकती है, परंतु हर व्यक्ति यदि अपने को जिम्मेदार समझे और एक विशेष चीज की जिम्मेदारी ले कि मुझे बिगड़ी को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। अपने घरों में बिगड़ी को बनाना है। जब हम भगवान को कहते हैं, शिव बाबा के लिए तो गायन है ना, बिगड़ी को बनाने वाला, तो हम उसके बच्चे अगर किसी की बिगाड़ेंगे तो क्या हमारी बिगड़ी बनेगी? हमें न अपने परिवार की बिगाड़नी है, न किसी और की बिगाड़नी है। हम उस भोलानाथ की संतान हैं जो बिगड़ी को बनाने वाला है। याद रखेंगे, देखो दुनिया में एक बात कही जाती है, हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। हम चाहते हैं सब हमसे मीठा बोलें, सब हमारी प्रशंसा करें, सब हमें आगे बढ़ाएं, लेकिन हम भी वैसा ही करें। लेकिन इससे एक सुंदर बात और है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, कोई न कोई आकर वैसा ही व्यवहार हमसे भी करेगा। हम बिजनेस में किसी का पैसा दबा लेंगे, हम इससे बच नहीं पाएंगे, कोई आकर हमारा भी दबा देगा, धोखा देगा। बोलना नहीं है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है इस सृष्टि के। जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, वही हमसे भी कोई करेगा। हम दूसरों पे जादू टोना कराएंगे, माताओं के लिए आपकी बात नहीं कह रहा हूं, बुरा न मानना, हम पे भी कोई कराएगा। मैंने कितनी माताओं को देख लिया, इसी धंधे में लगी हुई थी, वो आगे बढ़ रहा ना अपने परिवारों में। मुझे इसमें बहुत कहानी सुनने को मिलती है, किसकी, मैं उसमें एक टाइटल भी देना चाहता हूँ, चाची की। हमारी चाची ये करा रही है, जहां जहां मिले चाची ने ये कराया। मैं कहा चाची तो वंडरफुल चाची है भाई सबकी। तो मैंने देखा बहुत केसेज में, जिन चाचियों ने परिवारों पे तंत्र मंत्र करा के उनका बिगाड़ा, उनका सब कुछ बिगड़ गया। तब तो बहुत खुश होती थी, ये बहुत उछल रहे थे, मैंने सीधा कर दिया। अपनों की जेठानी है, तीन भाई और हैं, उनके परिवारों को नष्ट करती जा रही है, लेकिन आखिर में उसका भी नंबर आया। केवल वही नष्ट नहीं हो गए, उसके सारे बच्चे नष्ट हो गए। तब उसकी आंख खुली, ओहो ये भी था क्या, पहले नहीं पता था कि ये भी था क्या। इसलिए याद रखेंगे, जो कर्म जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, वो हमें भी प्राप्त होगा। एक कहानी और सुनाना चाहता हूं माताओं की, माताओं को बुरा तो नहीं लगता, भाई खुश हो रहे हैं आपकी कहानी सुन के, लेकिन मैं भाइयों की भी सुना दूंगा। सच्ची घटना है दिल्ली की ही, तो कहानी सच्ची सुनो, सीखने की कहानी है। छोटी यंग कन्याएं भी बैठी हैं, उनको भी सीखने की कहानी है ये, इसलिए मैं सुना देता हूं क्लासेज में। कुमार है दिल्ली का, उसके बड़े भाई की शादी हुई, लड़की बहुत तेज तराक आई, और आते ही उसने क्या काम किया, कुछ लड़कियां ये काम कर रही हैं, मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं, ये दुर्गति का मार्ग है। उसने आते ही कहा पति को, अब मां से कोई नाता नहीं, पहला पुण्य। जहां नौकरी थी वहां उसे ले गई, वशीकरण मंत्र का प्रयोग कराया, मां से पूरा नाता तोड़ दिया। 11 साल हो गए, मां से फोन भी नहीं हुआ, मां बैठी है ना सब, क्या हाल हुआ होगा मां का। लेकिन अब उसका हाल सुनो, 11 साल तक उसको कोई संतान नहीं हुई। ज्योतिषियों के पास पहुंची, ज्योतिष ने जन्म पत्री देखी, हाथ देखा, मस्तक देखा, और कहा तुमने किसी को उसकी मां से दूर किया है। तो वो क्या जवाब दे, होश उठ गए उसके। फिर उसने कहा तुमने अपने पति को मां से दूर किया है, बताना पड़ा किया है, पति बैठा था। कहा तो उसकी सजा तुम्हें ये है, ज्योतिष मेरा कह रहा है तुम निसंतान रहोगी। सिर पीटते हुए घर चली गई, वापिस आई लेके पति को, क्षमा मांगने लगी, लेकिन अब क्या होता, कर्म की रेखा खिंच गई। बच्चे से भी लड़कियां इन चीजों से बहुत करती हैं। अभी इसी ग्रुप में गुजरात की एक माता आई रोती हुई, क्या हुआ, मैं मजदूरी कर करके अपने बच्चे को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, उसकी शादी कराई, बहू आई, एक साल में मुझे घर से निकाल दिया, ये घर तुम्हारा नहीं अब मेरा है। मैंने पूछा तुम कहाँ रहती हो, मैं तो सेंट्रो में रहती हूँ, बहनें मुझे 6-6 मास रखती हैं जहां तहां, तो मैं तो उसे हंसाया कि बहू ने तुम्हें निकाला नहीं, तुम्हारा भाग्य बनवाने का मौका दे दिया तुम्हें, तुम मोह माया में फंसी रहती, तब रो रही थी, हंसने लगी कि हाँ किया तो अच्छा, पर क्या करे, बच्चे की याद तो आती है ना, वो फोन भी नहीं करने देती, आएगी ना। मोह ममता को जबरदस्ती तो नहीं तोड़ा जा सकता। तो बचे इससे हमारी बहने, यंग बहने, बचे इससे, ये माया है। मैंने उसको बता दिया, पहले मैंने उससे पूछा कहीं तुमने भी तो अपनी सास को निकाला नहीं था, कहना मैंने तो नहीं निकाला। मैंने कहा तो उसको उसकी बहू जरूर निकाल देगी, चिंता न करो। क्योंकि जो कर्म मनुष्य दूसरे के साथ करता है वो उसके साथ होता ही है, अविनाशी सिद्धांत है सृष्टि का, इसलिए पुण्य कर्म ही करने चाहिए। संबंधों पे ध्यान दे माताएं, संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है संबंध। छोटी मोटी संपत्ति के पीछे झगड़े नहीं, ये बुद्धिमानी है, यही ज्ञान है। और आगे चलें, हमें अपने जीवन को सरल चित्त बनाना है। योगी माना सहज जीवन जीने वाले, भागदौड़ टेंशन चक्रव्यूह में उलझे हुए, न खाने का टाइम, न सोने का, न उठने का, ये सहज जीवन नहीं है। याद रखेंगे, जो सहज जीवन जीते हैं उनके पास पैसा भी सहज आता है। सहज माना अलबेलापन नहीं, सहज इजी गोइंग लाइफ, इजी गोइंग नेचर, सहज जीवन। आज मैंने एक बात सुनाई क्लास में पीछे सवेरे, बाबा का महावाक्य है, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। आप धन के पीछे भागेंगे या ज्ञान रत्नों के पीछे, सोच लो, धन आपके पीछे पीछे आ जाएगा। देखिए, धन हमें प्रकृति से मिलता है, केवल अपनी मेहनत से नहीं, प्रकृति से, और प्रकृति हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को तुरंत स्वीकार करती है, ग्रहण करती है। जितनी जिसकी अच्छी अवस्था होगी, धन संपत्ति उसके पास सहज आती रहेगी। लेकिन बाबा ये तो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसे धनाढ्य बन जाएं, क्या कि मुझे भी न देखें, क्योंकि ये धन माया भी है। बाबा ने तो कहा धन माया नहीं है, पर धन माया बन जाती है अगर कोई बनाता है। पैसा आया, अब क्या करना, ज्ञान बाबा ये सब छूटा। इसलिए उतना धन तो सहज मिलता रहेगा जितनी आवश्यकता है, लोभ लालच आपको कष्ट में डाल देगा। संभलें इस बात से। एक भाई, एक की नहीं बहुतों की कहानी है, प्रॉपर्टी डीलर, जरा भाई आपका साथी, बहुत जमीन खरीदी हुई, 5 साल से मैं से बात करता था, मैं उसको बहुत समझाता था, अभी निकाल दो सब, सुख से जियो, बहुत सुंदर समय चल रहा है, क्योंकि बुद्धि बहुत जाती है उसमें। बार बार फोन करे, मिलने आए मधुबन में, 2 बार मेरे से हर साल मिले, मैं पिछले साल बहुत समझाया, अब समेटने का समय है, उलझने का नहीं, नहीं दाम बढ़ेंगे। अब आ गई मंदी, उस तरफ 30% डाउन हो गए भाव सब चीजों के। अब मुझे यहाँ आ रहा था, मैं उसी दिन फोन किया, भाई जी क्या करूँ, जमीन तो बिक नहीं रही कुछ भी। मैंने कहा अब तो बाबा को याद करो, पहले तो किया नहीं, अब तो कर लो, उलझ जाएंगे ना। कई लोग अपने धन का भी सुख लेना नहीं जानते, बढ़ाने के चक्कर में ही मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, धन का सुख ही नहीं। वो धन किस काम का, अपनी प्रॉपर्टी का सुख तो लें, चैन की नींद सोएं, अच्छा भोजन खाएं, परिवार से मिले जुलें, वो तो करें। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुझे हैदराबाद में मिला है, ज्ञान में भी था थोड़ा थोड़ा। मैंने पूछा कहाँ रहते हो, ये सुनते ही पूछने लगा, वो सोचने लगा कहाँ रहता हूँ। फिर उत्तर दिया ज्यादातर तो प्लेन में ही रहता हूँ। मैंने कहा कहीं तो रहते होगे, घर होगा कहीं? कैसे, तो घर बॉम्बे में है, पर जब कहीं से आता हूँ तो फोन करता हूँ परिवार में, एयरपोर्ट पे मिलने आ जाना। मैंने पूछा परिवार से नहीं मिलते? कभी कभी मिल लेते हैं। अच्छा ये जीवन? मैंने उसको कहा इतनी धन संपत्ति को तुम करोगे क्या, जो तुम्हें परिवार का सुख भी नहीं है। समझदार बने सभी। अब ईश्वरीय प्राप्तियां करने का समय है, शांत और संतुष्ट जीवन जीने का समय है। मैं आप सभी को सावधान कर दूं एक चीज के बारे में, जो मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं आजकल सबको वो चीज बताना। इस संसार में मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। एक साल में संसार का बुरा हाल हो गया है। डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बताएंगे एक साल में 3-4 गुने पेशेंट मानसिक रोगी आने लगे हैं, जिनको नींद नहीं आती, पागलपन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन हो गया है। और अगले 5 साल में इस संसार का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। इतना बुरा कि संसार के बहुत लोग रात को सो नहीं पाएंगे। बाबा का महावाक्य है, खराब महावाक्य है, खतरनाक, पर फिर भी मैं सुनाता हूं क्योंकि बाबा ने सुनाया है। बाबा ने संपूर्ण सत्य फिलोसोफी हमारे सामने रखी है, कुछ भी छुपाई नहीं, वो मुझे सब पता है। मुरलियों से वो हटा दी गई थी, लोग ऐतराज करते थे भगवान ने ये क्यों बोला, भगवान ऐसा बोलता है क्या, पर हमने सब सुनी हुई और ध्यान से सुनी हुई है। बाबा ने कहा था विनाश काल में ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, डॉक्टर भी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। और इसका कारण, कारण सुन लो आप, सभी आत्माओं ने हजारों साल से जो विकर्म किए हैं, जो विकारों में लिप्त रही हैं आत्माएं, ध्यान से सुन ले, वो सब जैसे आत्मा में नूंद है वैसे ही ब्रेन में भी रिकॉर्डेड रहता है। अब वो इमर्ज होने लगा है, होगा नहीं, प्रारंभ हो गया है। इसलिए अनेक मनुष्य परेशानियां महसूस कर रहे हैं, बिना मतलब खुशी गुम हो रही है, बिना मतलब समस्याएं आ रही हैं, बिना मतलब की दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो पाप और विकार इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। अनेक लोग दुखी होंगे, मैं खोल के बता देता हूं, अपने अंदर समाई हुई काम वासना से बहुत दुखी होंगे लोग, हो रहे हैं, मुझसे तो कॉन्टेक्ट करते हैं बूढ़े लोग, परेशान हो गए हम तो, ज्ञान में आए हैं अभी, क्या करें, विधि बताओ राजयोग की, इन वासनाओं को शांत करें। कल भी मैंने आपको कहा काम वासना और पाप कर्म संसार को नष्ट करने जा रहे हैं। फाइनल विनाश से पहले मनुष्य मर जाएगा, जिंदा ही दुखी रहेगा, बहुत पीड़ित होगा, धर्मराज की सजाएं होंगी ये। इसलिए हमें क्या करना है, विकर्म इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए बाबा बार बार कहता है सदा खुश रहो। जितने हम खुश रहेंगे वो विकर्मों का इफेक्ट ब्रेन पर कम आएगा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाओ। याद रखेंगे जो मनुष्य निगेटिव है, जिसके मन में निगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, अटेंशन से सुन लेना, हमारे चारों ओर जो निगेटिव एनर्जी है उसका कनेक्शन निगेटिव एनर्जी से हो जाता है और संपूर्ण निगेटिविटी उसके ब्रेन में आने लगती है। जो मनुष्य पॉजिटिव है उसका संबंध पॉजिटिव एनर्जी से हो जाता है, वो सुखी होने लगता है। इसलिए बहुत खुश रहें, पॉजिटिव हो जाएं और तीसरी बात बहुत हल्के रहें, सरलता। सरलता की बात हम सबके जीवन के लिए बहुत बहुत सुंदर है। सहज भाव से जिएंगे, सहज भाव, जो मैं चाहूं वही हो, इस संकल्प को आज ही छोड़ दें आप। आपके घर में आपके बच्चे हैं, जो मैं चाहूं बच्चे वही करें, होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है, उनके विचार अपने हैं, उनके संस्कार, उनकी इच्छाएं, उनका लक्ष्य, सब कुछ अलग अलग है। इसलिए गाइड करें आप उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें, लेकिन इस बात से परेशान ना हो कि बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो मानेंगे भी नहीं। सोचो, हम शिव बाबा की बात नहीं मानते, वो परेशान होता है? होता है? कितनी नहीं मानते हम उसके, रोज कहता है, मैं तो कहा करता हूं भगवान 78 साल से चिल्ला रहा है ये कर लो, और सुनते ही नहीं लोग, हम भी नहीं सुनते कहीं कहीं, परेशान होता है बाबा? साक्षी रहता है हल्के, और इस हल्केपन में एक सुंदर चीज आपको धारण करनी है, शब्द है स्वीकार कर लो। काम करें आप इस शब्द पर, जीवन में अनेक बातों को स्वीकार करना ही है। चार बच्चे हैं आपको, एक पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, दबाव डालते रहो आप उस पे, पढ़ो, तीन तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या होगा, पढ़ेगा? दबाव नहीं, उमंग दिलाओ, एप्रिशिएट करो। दबाव की नीति बिल्कुल गलत है। जिन परिवारों में बच्चों पे प्रेशर है, वहां सब कुछ बिगड़ रहा है। उमंग दिलाओ, उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना सीखो, जैसे बाबा ने हमें जगाया है, वैसे आप भी बच्चों को जगाओ। दबाव नहीं, बच्चों की रुचि देख लो। एक बच्चा है क्रिकेट में रुचि ले रहा है, एक बच्चा है पेंटिंग में रुचि दिखा रहा है, एक लड़की है फैशन डिजाइनिंग के कोर्स की तरफ उसका आकर्षण है, आप उसे कह रहे ये पढ़ो ये पढ़ो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, उस पे दबाव रहता है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, सफलता नहीं मिलती। इसलिए अपने बच्चों की रुचि को देखो अच्छी तरफ, जहां भी अच्छी रुचि है वहां उनको लगने दो, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो काम करेंगे सभी इस बात पर, कौन सी बात हुई, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो उन बातों को, स्वीकार करो जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन बातों को स्वीकार करो जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उन बातों को स्वीकार कर लो जिन्हें भगवान भी नहीं बदल सकता। स्वीकार करो, चित्त शांत होगा या नहीं, अपने लिए भी कुछ चीजों को स्वीकार करना है। एक व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, अब उसको घर में बैठना है, बेड पर रहना है, एक मास के लिए प्लास्टर लगा है, उसको दुखी होना चाहिए या और कुछ करना चाहिए? अब मेरा काम छूट गया, हे भगवान मेरा भाग्य, अब मैं घर से निकल भी नहीं सकता, क्या होगा, ये सोच सोच के वो दुखी हो या इस समय को अच्छा यूज करे, यूज करना सीखो। समय है ना, उसके पास एक मास समय है, वो घर से बाहर नहीं जा सकता, पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, समय उसके पास है, उसे उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, उसमें बहुत चीजें सीखी जा सकती हैं, बहुत चीजें की जा सकती हैं, वो करना चाहिए। समय अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन करने वाले ही सुखी रह सकते हैं। इसलिए कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना, ए बी सी डी फॉर्मूला बता देता हूं आपको। ए बी सी डी फॉर्मूला, ए फॉर एक्सेप्टेंस, वो फॉर्मूला नहीं पहले वाला, आत्मा का नहीं, ए फॉर एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो, ए फॉर अवॉइड, कुछ चीजों को अवॉइड करो, दो मीनिंग हुए ए के, बी बाईपास, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके साइड से निकल जाना चाहिए, सब निकलते हैं, सब निकलते हैं, सी कैंसिल, कुछ चीजों को फाइनली कैंसिल कर दो, जैसे आप सबने कर दिया होगा, बाजार के रसगुल्ले खाना कैंसिल किया या नहीं माताओं ने, या चुपचाप कर लेती हैं थोड़ा सा काम, बोलो क्या ही विचार माताओं का। हम ट्रेन में जा रहे, एक युगल हमारे साथ बैठा, शांतिवन से ही आया, उनकी सीट साइड वाली थी, वो कर्टेन लगा होता है, उसने देखे समोसे बिक रहे हैं, आया वो समोसे वाला, खुशबू तो सबको आ रही थी, अब उससे रहा नहीं गया, उन्हें देखा हमारा मुंह उधर को है, तो चुपचाप इशारा किया, पर्दे से दो लिए, 10 रुपए उसे दिए, चुपचाप खा लिए, हमने देख तो लिया वो खा रही है, मैंने कहा खाने दो, पहली बार आई थी, नए नए थे। सीमा ना कैंसिल, कुछ चीजों को फाइनली कैंसिल, नॉन वेज खाना कैंसिल कर दिया ना, ये माताओं का चलता है थोड़ा बहुत, भाइयों का, सबका कैंसिल है पक्का, देवता कहां ये चीज खाएंगे गंदगी, कैंसिल। ऐसे देख लो जीवन में कुछ चीजों को कैंसिल, मैं खाने पीने की तो आपको हंसी में उदाहरण दिया, बहुत चीजें कैंसिल, अरे पवित्रता का हमारा मार्ग ही नहीं है, कैंसिल। डी डिटर्मिनेशन, डू विद डिटर्मिनेशन, करो दृढ़ता पूर्वक, जो करना है उसके पीछे लग जाओ। हम हंसी में सोचा करते हैं भगवान भी हमारे पीछे लग गया है, संपूर्ण बना के घर ले ही जाऊंगा, तुम बच नहीं सकते अब मेरे से, तुम्हें सुखी करना ही है मुझे, कहां तक दुखी रहोगे, पीछे लग गया ना, थकता नहीं है, 78 साल हो गए थकता नहीं है, हम भी अपने पीछे लग जाएं जरा। सुंदर बात एक सुने आप, मैं सोचता हूं इस पर बहुत बार, जितनी श्रेष्ठ कामना और दृढ़ इच्छा बाबा के मन में है हमें बनाने की, उतनी इच्छा यदि हमारे मन में भी हो जाए, बन जाएंगे तुरंत, क्योंकि बनाने वाला हर दम तैयार बैठा है हमें बनाने के लिए, केवल हमारे मन में श्रेष्ठ इच्छा होनी चाहिए बनने की। आप इस श्रेष्ठ इच्छा, दृढ़ इच्छा पर ध्यान दें। अब आगे चलें, तीन सुंदर धारणाएं आपको याद भी रहेंगी, साक्षी भाव, समर्पण भाव, सुभाव। सुभावना साक्षी भाव में रहना, समर्पण भाव पैदा करना अपने अंदर, तीनों ही सुंदर धारणाएं हैं और बहुत गुह्य भी हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, केवल उतना बताता हूं जो आप प्रैक्टिकली कर सकें, और तीनों ही धारणाओं में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, आप प्रारंभ करें अपने पुरुषार्थ में। पहले हम लेंगे सुभावनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबकी उन्नति हो, ये कामना रखना, अपनों के लिए तो ये कामना रखते ही हैं, पड़ोसियों के लिए भी। हमारी सुभावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करती हैं, बहुत ध्यान देंगे, इष्ट देव देवियां हैं सब, महान आत्माएं बैठी हैं, आपकी सुभावनाएं दूसरों का कल्याण करेंगी, उनके मार्ग को साफ करेंगे, रास्ता खोल देंगे उन्नति का, सुभावनाएं। इसी के बीच में एक धारणा की सुंदर बात और सुनाता हूँ आपको। ये छोटी बातें हैं पर बहुत महत्व की हैं। कुछ मनुष्यों में आदत होती है बातों को पकड़कर रखने की, होल्डिंग नेचर। जो मनुष्य बातों को पकड़कर रखते हैं, सोच लें अभी आप, और एक सुंदर बात सुन लेंगे। सभी युवक जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो इस पे ध्यान दें। जो मनुष्य बातों को पकड़कर रखते हैं वो आने वाले सुंदर अवसरों को मिस कर देते हैं। ड्रामा चल रहा है निरंतर, जिसको रोकते हैं तो रुक गई ना आने वाली सुंदर बातें। बातों को पकड़ना माना रोक लेना, इसलिए बातों को छोड़ते चलें। धारणा पर ध्यान दें सभी अपने अपने परिवारों में। कोई भी बात रोज हो जाए, जल्दी से जल्दी बातों को खत्म करके आगे बढ़ें। सुना सभी ने? कईयों की आदत होती है, आज सवेरे एक बात हो गई सारा दिन चलाएंगे उसको। जैसे टीवी चैनल वाले चलाते हैं ना, एक समाचार आ गया वही दिखाते रहे, देखने वाले बोर हो जाते हैं पर दिखाने वाले बोर नहीं होते। वही वही बात सारा दिन सुना रहे हैं। बातों को पकड़ के रखना माना सुंदर बातों से वंचित हो जाना। इसलिए नेचर बनाओ बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें। बातों का मूल्य ही नहीं होता। ऐसे नहीं घर में एक बात हो गई और उसको सारा दिन चला रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसने मुझे ये कहा, जो घर में मिलने आई उसको भी सुना रहे हैं, इसने आज मुझे ये कहा, देखा। छोटी बातों में लगे हुए हैं। जो महान आत्माएं हैं उन्हें अब अपने महान कर्तव्यों को याद करना चाहिए। सभी सोच लें, हमारे महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरीदाबाद में से ज्यादा नहीं 10 महान योगी निकल जाएं, जो संसार को लाइट माइट दें। मिल जाएंगे 10 या नहीं? कौन कौन मिलेंगे हाथ उठाना जरा। ठीक है, बस बहुत हो गए, बहुत हो गए। मैंने आपको कहा अगले 5 साल में हम सब ये सीन देखेंगे कि रात को लोग सोएंगे नहीं। तब आपको क्या करना होगा? उन 10 को मैं क्या कहूं कि उन्हें सबको सुलाना होगा। मां सुला देती है ना लोरी देकर बच्चों को। हम सब भी पूर्वज हैं। अब मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूं, सबको ये काम करना है। हम पूर्वज हैं, हमारी वंशावली अगर परेशान हो रही होगी तो हम भी सुख से सो नहीं पाएंगे। हमें वाइब्रेशंस देकर सबको सुलाना होगा। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, हमें वाइब्रेशंस देकर सभी के दुख हरने होंगे। संसार विघ्नों की चपेट में आ जाएगा, हमें विघ्न विनाशक बनकर सबके विघ्न नष्ट करने होंगे। सोच लो आप कौन कौन बाबा के ये महान कार्य करना चाहेंगे। स्वयं सोचो और अपने को तैयार करो। बोलो किसके लिए चाहिए? बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर प्योरिटी, बहुत सुंदर अमृत वेला। 3 चीजों पे ध्यान दें। सुंदर योग माना कितने घंटे रोज? 8 हो जाए तो बहुत अच्छा, चलो 6, 2 की छुट्टी, 6 घंटे तक योग हो जाना चाहिए। फिर से वहीं आ जाएं, तो मैं आपको यही याद दिला रहा था कि महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं या हम छोटी बातों में लगे हुए हैं, बातों को पकड़ के बैठे हैं? इसने मुझे ये कहा था, 10 साल पहले इसने मुझे बड़ा दुखी किया था। 10 साल पहले की बात पक्की है। आज भगवान ने मुरली में क्या कहा था वो याद ही नहीं है। छोड़ दें बातों को। छोड़ देंगे या नहीं? छोड़ दें। क्या करना है उन्हें याद करके? गई, पूरा हो गया। अभी छोड़ दें, अभी। मेरे कहते कहते जो भी जिसके पास रखा हो ना मन में। एक माता आई, मेरे पति ने मुझे बहुत दुख दिया है, जब से शादी हुई मैं दुखी हूं। मैंने कहा इसीलिए वो मिल गया सुप्रीम पति, अब सुखी हो जाओ। दुख बाबा के पास ला रहे हैं अब आत्माओं को, इसलिए उन दुखों को धन्यवाद भी दे दो जो बाबा के पास ला रहे हैं। उन समस्याओं को भी दुहाई दो जो आपको बाबा के पास ला रही हैं। एक और सुंदर धारणा अभी इसे अपनानी है। ये छोटी सी बात है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। गीता बहन इसके बाद संकल्प शक्ति पे एक सुंदर क्लास कराएगी, मैं शुरू कर रहा हूं। हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है, रचनात्मक शक्ति। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका हम निर्माण करेंगे। ध्यान दें इस बात पर, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। हमारे संकल्प में क्या है बोलो? क्रिएटिव एनर्जी, निर्माण करने की शक्ति, रचनात्मक शक्ति, सृजन शक्ति। याद रहेगी बात? एक ही बात है, मैंने अलग अलग शब्द बोले हैं। क्या है हमारे संकल्प में? मैं जानबूझ के रिपीट करा रहा हूं, आपके अंदर जानी चाहिए। निर्माण शक्ति है। कोई बार बार सोचता है मैं तो बहुत गरीब हूं, उससे ही सोच लेता है मैं तो गरीब हूं, तो क्या होगा? गरीब ही रहेंगे। इसलिए सवेरे उठने पर पहले 10 मिनट सुंदर संकल्प करने हैं। सुंदर संकल्प, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, मैंने तो जीवन में दुख ही देखा है। जहां जाएंगे यही कहेंगे मैं तो बहुत दुख देखा है, तो क्या होगा? दुख बढ़ता जाएगा। समझ लें आप इन बातों को। मेरा तो भाग्य खराब है, जब से इस घर में आई हूं फूटा भाग्य, क्या होगा? रहासा भी फूट जाएगा। अब मैं जिस सुंदर बात पे आपको लाना चाहता हूं वो सुन लें आप। संकल्प कर लें मैं अब से हर क्षण मेरा बहुत सुंदर होगा। जरा इसको कुछ दिन ध्यान से भर लो अपने अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में भर दो। अब से मेरा हर पल सुंदर होगा, अब से हर कदम पर मुझे सफलता मिलेगी। सुंदर संकल्प करो जरा भविष्य के लिए, वही होगा। कम से कम 3 कोई संकल्प चुन लो अपने लिए जो मन में समा दो, बार बार करो उसे 7 दिन तक, पक्का हो जाए। जहां भी मैं कदम रखूंगा वहां सफलता ही सफलता होगी। मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊंगा तो सोना हो जाएगा, कर दो पक्का। भले ही ना हो सोना, सोचने में क्या जाता है? सोचने में कुछ बुराई है? परिवर्तन होने लगेगा, आपको सफलता मिलने लगेगी। बहुत ध्यान देना है इस पर। साक्षी भाव, बहुत सुंदर धारणा है। अध्यात्म की टॉप मोस्ट धारणा है ये। जब मनुष्य साक्षी हो जाता है, समझ लें वो संपूर्णता के समीप पहुंचते जा रहे हैं। साक्षी भाव का अर्थ है कि संसार के खेल को बस देखना, एंजॉय करना। इसका इफेक्ट न हो, नो रिएक्शन, न रिएक्ट करना न उसका कोई प्रभाव पड़ना, जो कुछ भी हो रहा है। तो पहले मैं दो बातें कहूंगा आपको, हर आत्मा का यहां अपना अपना पार्ट है, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं है। सुन लिया सभी ने? निर्मल करो अपने मन को, इसने मेरे से ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, नो, सब पार्ट बजा रहे हैं, यहां किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से जुड़ी हुई एक बात और, सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य है। आपके घर में जितने बच्चे हैं सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं। ये तो मनुष्य ऐसे ही सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ाया अपने बच्चों को, मैंने शादियां कराई, मैंने बिजनेस बनवा के दिया, मैंने मकान बना के दिया। ठीक है, दिया तो सही, पर वो अपना भाग्य लेकर आए थे, है या नहीं? ज्ञान ले लिया, अब ये पता चल गया ना, यहां सबका अपना अपना भाग्य है। और तीसरी जो सबसे पावरफुल बात है, जिसमें समय लग जाता है, आज से आप शुरू कर दें, इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। अगली लाइन भी सुन लें, वही होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको मनुष्य सोचता भी नहीं कि फिर हो, परंतु क्योंकि कर्म अनुसार सब कुछ हो रहा है, बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। हर घटना को देखते हुए जरा ये विचार करना, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। तो इस ड्रामा को साक्षी होके देखने की प्रैक्टिस बढ़ानी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस संसार में जो कुछ होगा वो देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। हमें अपने को तैयार करना है, यही होना है। विनाश माना? विनाश माना क्या? विनाश को डिफाइन किया है बाबा ने इस तरह, बच्चे ये धरती अब देवताओं के लिए खाली होनी है। किसके लिए खाली होनी है? किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। और खाली किसको करनी? हमें ही। और प्रभु प्लान कैसा? कि मनुष्यों के शरीरों की खाद लग जाएगी धरती को, और वो देवताओं को काम आएगी। देखो कैसा प्रभु प्लान, विनाश में कितना भारी कल्याण। एटम बम छूटेंगे, सूरज चांद तारों की लोकेशन बदलेगी, जो इस स्पेस में गंदगी फैली हुई है वो क्लीन हो जाएगी गर्मी से, अग्नि से। बहुत गंदगी है ना चारों ओर हमारे, सब जल के नष्ट होके क्लीन, आकाश बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो एक और एटम बम्स विनाशकारी, दूसरी ओर बहुत बड़ा प्योरिफिकेशन, स्वच्छता। प्रैक्टिस करेंगे स्वीकार करने की, साक्षी होके देखने की, और समर्पण भाव, मेरा सब कुछ, बोलो जरा, मेरा सब कुछ, यहां बैठ के या घर जाके भी, क्या विचार है? मेरा सब कुछ, नहीं तो मुझे माताओं की बात याद रहती है, बाबा हंसाया करते थे, माताएं मंदिर में जाके ढोल बजाती हैं, गाती हैं, तन मन धन सब तेरा, आगे तेरा तुझको क्या लागे मेरा, और घर आके तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा। ठीक है, ये नहीं। भाइयों ने ताली बजाई माताओं के लिए, देख भाई खुश हो रहे हैं। अब सच्चे मन से कर दो, बाबा किसी को लेगा नहीं। अब क्या क्या करना है सोच, रोज कर लिया करें एक बार, बाबा मेरा जीवन तुम्हारे हवाले, ये परिवार सब तुम्हारे हवाले, केवल तेरा नहीं तुम्हारे हवाले, तुम संभालो इसे, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर धारणा है, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं, मैं इसके लिए कमा रहा हूं, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, परिवार मेरा जीवन मेरा हर कर्म। धन भले अपने पास रखो, न कहना धन तेरा, धन तो भगवान क्या करेगा हमारा, ये तो कागज है उसके लिए। बाबा इस धरा को हीरो सोने चांदी से भरपूर करके जाएगा, उसके लिए नोट कुछ भी नहीं है। बाबा ने कभी कहा, मुरली में सुना हो आपने, एक साल में ही तुम्हारे महल में ही एक हीरा इतना कीमती लगा होगा जितनी सारी मुंबई की संपत्ति, इतना तो एक हीरा लगा होगा तुम्हारे महल में जो चमकेगा दूर से। मैंने भी कभी हीरो की चमक नहीं देखी थी, पीछे मैं दुबई गया तो एक जगह मॉल में ले गए हमें, तो मॉल में बाहर कांच लगे हुए थे, जो दुकानें थी सोने हीरो की, तो उन्होंने जो वो था ना शोरूम पीछे बाहर, उसमें हीरे रखे हुए थे सुंदर सुंदर, उनकी जो चमक थी मैंने पहली बार देखा, किरणें फैलती हुई उनसे रंग बिरंगी, उनको देखते ही मन लगता था कि सतयुग में जहां चारों ओर ये चमक होगी तो देवताओं का मन कितना आनंद विभोर रहेगा इन्हें देख देख के, बाकी चीजें तो अथाह हैं, वाइब्रेशंस कितने अच्छे निकलते हैं। हम एक सोने के मंदिर में गए भारत में, एक मंदिर पूरा सोने का बना है एक सन्यासी ने, चित्तूर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र में, 100 फुट बाई 40 फुट सोने का मठ दिया गया है, 25,000 या 35,000 किलो सोना उसमें लगाया उसने। और वंडरफुल बात ये थी कि लोगों को सरकार को उसका पता तब चला जब डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ने उसकी ओपनिंग की, उसने ओपनिंग भी प्रेसिडेंट से, तब वो खुला कि अरे सोने का मंदिर, किसी को पता ही नहीं चला इतने दिनों बनाते हुए, ऐसा उसने गुप्त ढंग से बनवाया। हम लोगों को तो बैठा देता है वो आगे ले जाके, मैं दो बार जा चुका हूं, मैं वहां बैठ के सोचता हूं यहां के वाइब्रेशंस कितने सुंदर हैं, जहां सोना ही सोना होगा वो स्वर्ग के वाइब्रेशंस कैसे होंगे, जहां प्रकृति का सौंदर्य होगा, हवा भी चलेगी तो सुगंधित, सेंट की जरूरत ही नहीं, पानी में भी सुगंध होगी, कैसी दुनिया बना रहा है बाबा। कर दो अपना जीवन उसके हवाले, मेरेपन को और मैंपन को उसको अर्पित कर डालो, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा, मस्त हो जाएंगे इसमें, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, बस इसमें बैलेंस जिस चीज का रखना है परिवार वालों को, बैलेंस कि सब कुछ तेरा भी साक्षी भाव भी लेकिन कर्तव्य पालन भी, बच्चों के लिए साक्षी भाव भी लेकिन बच्चों के लिए कर्तव्य पालन भी। ये नहीं हमें उन्हें पढ़ाना नहीं है, उनकी केयर नहीं करनी है, सब कुछ करना है लेकिन साक्षी रहते हुए कि इनका भाग्य है अपना अपना, लेकिन माँ बाप होने के नाते हमें इनकी पूरी पालना करनी, इनको मदद करनी, इनको आगे बढ़ाना है, इनको सिखाना है, डांटना हो तो डांटना भी है, लेकिन ये नहीं डांट दिया उनको और स्थिति बिगाड़ ली अपनी सारा दिन, ये हो जाता है ना, बच्चों को डांट दिया तो अपनी स्थिति बिगाड़ ली, खुशी गुम, सारा दिन परेशान, बच्चे मेरी सुनते नहीं है, पता नहीं ये क्या करेंगे, ये नहीं, हल्कापन, समझते हैं ना समर्पण भाव को, सब कुछ तेरा। जब ऐसा करेंगे तब लास्ट में क्या होने लगेगा, मेरी समस्याएं भी तुमको अर्पित। और अनुभव होने लगेगा कि बाबा समस्याओं को हरने लगा। तो बाबा हमारा है, उसे यूज करते चलो, हमारा है वो। एक लास्ट बात कल मैंने शुरू की थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस नशे में रहने वाले संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप सबको ये सिखाना चाहता हूं और आज से आप शुरू करो, क्योंकि ये टॉपिक मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत बड़ा है। मैं एक बात ही आपको सिखाता हूं, आज से संकल्प के द्वारा बहुत कुछ करना प्रारंभ करो रोज। कैसे? पहला संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा संकल्प, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। बहुत अच्छी तरह विद राइट एंड प्रॉपर फीलिंग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। और तीसरा संकल्प वो करो जो आप चाहते हैं। मान लो माताएं आई हैं और सोच रही हैं घर जाएंगे तो पति की डांट पड़ेगी, कईयों को हो रहा होगा। संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी पति गुलदस्ता लिए हुए मेरा स्वागत करेगा। भाइयों को पत्नी का डर हो तो वो भी ऐसे ही करेंगे। ये ना सोचना आज तो घर जाऊंगा तो खाना भी नहीं देगी कि वहीं खा के आओ। संकल्प जैसा आप करेंगे वैसा ही देखेंगे, लेकिन ये दो संकल्प पहले करना। एक बात जो मुझे छूट रही थी आप सबको, भोजन बनाते हुए बहुत बहुत बार, 108 बार मैं कहता हूं, याद करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं। भोजन पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो उस भोजन को खाएगा उसका कल्याण होगा। ध्यान से सुन ले भाइयों, में कौन कौन बना रहे हैं भोजन? अच्छा, माताएं सब बना रही, कोई नहीं बना रही है? सब। अब सुन ले ध्यान से, भोजन बनाओ ये अभ्यास करो, अपने युगल को खिलाओ, संकल्प करो इस पवित्र भोजन को खाकर ये आत्मा बाबा का बन जाए। किसी बीमार को खिलाओ, संकल्प करो ये ब्रह्मा भोजन खा के ये निरोग हो जाए। आपके बच्चे को खिला रहे हैं, संकल्प करो ये पवित्र भोजन खा के इसकी बुद्धि का विकास हो जाए। किसी को क्रोध आता है, उसे खिलाओ और संकल्प से खिलाओ इस पवित्र भोजन को खाकर इसका चित्त शांत हो जाए। अपने लिए भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर अनुभव होंगे आपको। अगर आप दो बार भोजन बनाते हुए याद करते रहो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो आपका चित्त पवित्र, घर में पवित्र किरणें फैलेंगी, भोजन उन किरणों को समाएगा और आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। चार फायदे होंगे। बोलो माताएं कर सकती हैं? करेंगी। टीचर बहने अगर बैठी हो तो पूछना अपनी अपनी माताओं से, कराओ ये देखो। आप इसको महत्व दो, छोटा ना समझना, बहुत बड़ी साइंस हो गई आजकल ये वैज्ञानिकों ने। छोटा सा प्रयोग सिखाता हूं, सुनाता हूं, जहां से मैंने सीखी थी ये बात। दो गिलास में पानी लिया, एक गिलास पे लिख दिया नफरत कागज पर, दूसरे पे लिख दिया लव। सारी रात दोनों गिलास एक कमरे में रख दिए, जब सवेरे अपने इंस्ट्रूमेंट से पानी को चेक किया तो जिसपे नफरत लिखा था उसमें काली तरंगे पैदा हो गई, जिसपे लव लिखा था गोल्डन सुंदर तरंगे अंदर दिख रही थी। अब आप सोचो, सोच लो अच्छी तरह, ध्यान दो, अटेंशन। हमारे शरीर में 72% पानी होता है, सबको पता होना चाहिए। अगर हमारे मन में नफरत है, अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, अशांति है, परेशानी है, तो सारा पानी कैसा हो जाएगा? काला। और हम कैसे रहेंगे? बीमार। इसलिए जिसके मन में खुशी है, शुद्ध विचार हैं, प्रेम भाव है, जो आनंद में रहते हैं, उनके पूरे बॉडी में उच्चार्ज हो जाता है पानी और वो बीमारियों को नष्ट कर डालता है। इसे अपने लिए भी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और जो हम सोचेंगे भोजन बनाते हुए, हमारी दृष्टि से, हमारे हाथों से भोजन में समाएगा, भोजन पवित्र होगा, आपके घर का कल्याण होगा। अब माताओं के हाथ में है अपने घर का कल्याण करना। ठीक है बात? अगर आप इस बात को जरा महत्व दे दें, और भी कोई भोजन बना रहा है ना आपके घर में, बुजुर्ग हैं आप, आपकी बहू भोजन बना रही है, आप वहां बैठ कर ये अभ्यास करते रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा। आपकी आंखों से पवित्र किरणें फैलती रहेंगी पूरे किचन में, सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक है? बाकी कुछ थेरेपी मुझे आपको सिखानी है, हाथों से कैसे एनर्जी देनी है बॉडी को, वो श्याम की क्लास।